पिछले आधे घंटे में शायद हम सब ने इतना धन कमाया जो शायद हमारे व्यवसाय में करोड़ साल काम करने के बाद भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमने भगवान का नाम लिया। भगवान का नाम वो धन है जिसका कभी भी नाश नहीं होता, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा धन। ये संसार का धन क्या है? आज है, कल नहीं। लक्ष्मी देवी का और एक नाम है चंचला, जो बहुत चंचल है, एक जगह पर रहती नहीं है ज्यादा समय, इधर से उधर, उधर से इधर। लेकिन उनके पति का नाम है चंचलापति, विष्णु भगवान का नाम है चंचलापति। और हमेशा लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर निवास करती हैं और वहां पे प्रभु की सेवा करती हैं। तो अगर हमने भगवान विष्णु या कृष्ण की सेवा की तो लक्ष्मी जी का निवास स्थान तो वहां होना ही है। इसलिए भक्त को अलग से धन प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। भक्त जानता है कि इस दुनिया का धन जो है इसकी ज्यादा कोई कीमत नहीं है। हालांकि आवश्यकता है, शरीर को बनाए रखने के लिए धन की आवश्यकता तो होती है, परंतु भक्त अच्छी तरह से जानता है कि जैसे अपने प्रारब्ध में लिखा है वैसे ही होगा। जो हमारे कपाल पर लिखा है बस उतना ही धन आएगा, एक पैसा ज्यादा नहीं, एक पैसा कम नहीं। भगवान गीता में समझाते हैं कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो जो भी हम प्राप्त करते हैं वो अमर रहता है, शाश्वत रहता है। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कृष्ण कहते हैं अगर किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा भी कुछ किया इस भक्ति मार्ग में, कभी एकाध बार भगवान का नाम लिया, गलती से भी लिया हो, एकाध बार सत्संग में चले आया, एकाध बार मंदिर में जाके भगवान के सामने सर झुकाया, तो फिर भी ये इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, जीवन बीमा। मतलब कम से कम उसे अगला जन्म जो है वो मनुष्य जन्म मिलेगा, पशु का जन्म नहीं मिलेगा। महतो भयात, सबसे बड़ा भय क्या होता है इंसान के लिए कि अगले जन्म में हमें कहीं पशु का जन्म नहीं मिले। हम जब पशुओं को देखते हैं तो मन में भय होता है, कैसे, किस तरह का जीवन है ये। हम सब इन 84 लाख योनियों में भ्रमण कर चुके हैं, इन सारे योनियों का अनुभव हमें है, लेकिन हम भूल चुके हैं। ये भी भगवान की कृपा है। अगर हमें याद रहता कि हम पिछले जन्म में क्या थे, उसके पिछले जन्म में क्या थे, हमने जो भी 84 लाख योनियों में भ्रमण किया है, हमारे अनुभव क्या थे, तो सोचिए कौन सा आदमी अपने सही दिमाग में रह सकता था। हर एक आदमी पागल ही हो जाता। सोच लीजिए कि हमें याद आ गया कि हम एक जन्म में चूहा थे। हम थे तो सही, 84 लाख योनि भ्रमण करके यहां पर आए हैं, और फिर हम देख रहे हैं कि बिल्ली हमें खाने आ रही है, बिल्ली लपक के आ गई, मारा, हमें खा लिया। हर जन्म में ऐसे हुआ है हमारे साथ में, हर जन्म में हमने भयानक मृत्यु का सामना किया है, बुढ़ापे का सामना, वृद्धावस्था, बीमारी का सामना, नाना प्रकार के कष्टों का सामना हमने किया है। इन सब का स्मरण अगर हमें हो जाता तो क्या दशा हो जाती हमारी। तो भगवान बड़े कृपालु हैं, हमें विस्मृति दे देते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में विराजमान हूं, और हृदय में स्थित होकर मैं सभी को ज्ञान देता हूं, स्मृति देता हूं, और विस्मृति भी देता हूं। तो अगर हम कुछ भूल रहे हैं तो ये भी भगवान की कृपा से ही भूल पा रहे हैं। तो भक्ति करने से देखिए कितना लाभ होता है। भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृदपि येन मुरारी समर्चा, त्रीत तस्य यमेन न चर्चा। एक संत ने कहा है, भगवत गीता किंचित धीता, अगर किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा गीता का पाठ रोज किया, गंगा जल लव कणिका पीता, थोड़ा सा गंगा जल का पान किया, सकृत अपि येन मुरारी समर्चा, मुरारी या श्री कृष्ण की एक बार ऐसे यू ही बस अर्चना कर ली, ज्यादा हृदय से नहीं, ऐसे ही बस कर लिया, तो क्या होगा? त्रियते तस्य यमेन न चर्चा। उस व्यक्ति को मृत्यु के बाद में यमराज से या यमदूतों से चर्चा करना नहीं होगा, यमदूत उसको स्पर्श नहीं कर पाएंगे, यमदूत दूर ही रहेंगे उससे। यमदूतों का अधिकार उस व्यक्ति के ऊपर नहीं है जिसके मुख से हरि का नाम निकल चुका है। इसलिए अगर हमें यमदूतों से बचना है तो हमें हरि का नाम का उच्चारण करना चाहिए। तो इस तरह से ये भक्ति मार्ग इतना अच्छा है, इतना सुंदर है, लेकिन इतना कुछ हमें प्रदान कर सकता है। हम यहां बैठे बैठे भगवान को प्रकट करा सकते हैं सामने। करोड़ों करोड़ों योगी करोड़ों सालों तक तपस्या करने से भी, करोड़ों जन्मों से तपस्या करने से भी भगवान को प्रकट नहीं करा सकते, लेकिन थोड़े भावुक भक्त अगर बैठकर भगवान के नाम का संकीर्तन करें तो भगवान खुशी से वहां पर प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि से कहते हैं कि मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता हूं, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषुवा। फिर कहां रहते हैं भगवान? यत्र गायन्ति मत भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, कि जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, मेरा नाम संकीर्तन करते हैं, हे नारद, मैं वहां पर प्रकट हो जाता हूं। क्या इसका मतलब है कि भगवान योगियों के हृदय में नहीं है? अवश्य है, लेकिन प्रकट नहीं होते। भगवान को हृदय में ढूंढना बहुत मुश्किल है तो वो कीड़े के हृदय में भी, एक नास्तिक व्यक्ति के हृदय में भी भगवान स्थित हैं, परंतु प्रकट नहीं कराते अपने आप को। परंतु जब भक्त लोग इकट्ठे होकर उनका नाम संकीर्तन करते हैं तो खुशी से भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं। दक्षिण भारत के आलवारों की कथा इस बारे में बड़ी सुनने लायक है। एक आलवार थे, भगवान के बड़े शुद्ध भक्त थे, 24 घंटे भगवान का स्मरण किया करते थे, सतत नाम कीर्तन, जैसे कि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः। तो नाम कीर्तन करते करते झूमते झूमते चलते जा रहे थे, अचानक बारिश आ गई। तो फिर देखा कि कहां पर अभी बारिश से सुरक्षा मिल सकती है, तो पास में गुफा था, तो गुफे में जाकर बैठ गए। अब सोचा चलो अभी बारिश है तो यहां पर सोया जाए, और कुछ काम नहीं है, तो सो गए। उस समय दूसरे आलवार आ गए वहां पर, वो भी भगवान के शुद्ध भक्त, बारिश से बचने के लिए यहां पर भाग के आए थे, देखा कि यहां गुफा है, चलो अंदर जाते हैं। लेकिन अंदर गए तो देखा है कि कोई आदमी सो रहा है, तो कहने लगे भाई साहब कौन है? तो मैं, मेरा नाम ये है, तो मुझे अंदर जगह देंगे? मैं तो सो रहा हूं। अच्छा, तो एक आदमी को सोने के लिए जगह है तो दो आदमी को बैठने के लिए जगह है, तो मुझे जगह दे दीजिए। ठीक है, तो दोनों बैठ गए। अब आप जानते हैं कि दो भक्त जब मिलते हैं तो किस विषय में बात करते हैं? भगवान के बारे में बात करेंगे। तो बात करते करते समय बीत गया, अचानक तीसरे आलवार वहां पर आ गए, उनको नहीं मालूम था अंदर कौन है। वो भी बारिश से बचने के लिए वहां पर आ गए। और जब वहां चलते आए, देखा कि दो जन अंदर बैठे हैं, भाई साहब मुझे भी अंदर जगह दीजिए। लेकिन हम दो जन तो बैठे हैं। अच्छा, दो जनों को बैठने के लिए जगह है तो तीन को खड़े होने के लिए जगह है, तो ठीक है भैया, चलो आओ आओ अंदर आ जाओ, जैसे हमारे रेलगाड़ियों में बसों में होता है। तो आ गए तीनों अंदर, तो तीनों खड़े हो गए, तीसरे भी शुद्ध भक्त थे भगवान के। बस तीनों को पता नहीं चला समय कैसे बीत रहा है, बारिश बाहर तो बंद हो गई कब की, लेकिन ये अपने कथा में मग्न है, बिल्कुल मस्त है, बोले जा रहे हैं सुने जा रहे हैं। फिर बीच में उन्होंने देखा कि भाई हम तीन जन जब खड़े थे तो हिलने को जगह हो रही थी, लेकिन अब हिलने को भी जगह नहीं है, कौन आ गया बीच में, चौथा आदमी कहां से आ गया। लेकिन फिर भी अपनी कथा में इतने मग्न थे कि समझ में नहीं आए। फिर चौथा आदमी भी बीच में बोलने लगा। ऐसे काफी समय तक चला और फिर सबको पता चला कि ठीक है, बारिश बंद हो गई। और जब सबके बाहरी चेतना आ गई तो उन्होंने क्या देखा, वो चौथा आदमी कौन है, स्वयं भगवान आ गए। क्यों, भगवान देख रहे हैं, अरे ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो मैं तो सुनना चाहता हूं क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में ये लोग। स्वाभाविक है ना, जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो व्यक्ति सुनना चाहता है कि मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। कोई व्यक्ति वहां से गुजर रहा है, हम देखते देखो, हम वो देखो, उसको उंगली दिखाकर बोलते देखो वो व्यक्ति, तो वो तो आएगा हमारे पास, भाई क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में। तो हम जब कृष्ण कथा करते हैं, भगवान के बारे में कुछ बोलते हैं, उनका नाम संकीर्तन करते हैं, तो भगवान वैकुंठ में लक्ष्मी देवी के साथ बैठे होते हैं, गोलोक वृंदावन में कृष्ण भगवान राधा रानी के साथ बैठे, देखते अरे वहां पे मेरा नाम लिया जा रहा है, मेरी कथा हो रही है, चलो सुनो, तो सुनते हैं जाकर क्या बोल रहे हैं, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवान को प्रकट कराना कठिन नहीं है। लोगों की ये गलत फहमी है कि अगर कोई भक्ति मार्ग में आए तो उसे संन्यास लेना चाहिए, जंगल में जाना चाहिए, बहुत बड़ा पंडित होना चाहिए, लेकिन नहीं, भगवान कृष्ण गीता में ऐसे तो कभी नहीं कहते। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहरितम अश्नामि प्रयतात्मनः, कि कोई व्यक्ति अगर मुझे पत्र पुष्प फल इत्यादि अर्पण करे लेकिन भक्ति भाव से करे तो मैं इसे स्वीकार करूंगा प्रेम से, आनंद से। भगवान हमारा प्रेम चाहते हैं। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो कह सकता है कि मेरे पास एक पत्र पुष्प नहीं है अर्पण करने के लिए भगवान के लिए। इस तरह से भगवान की भक्ति ये बहुत सुलभ है, कोई भी कर सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बड़े विस्तार से भक्ति मार्ग का वर्णन करते हैं भगवत गीता में। भगवत गीता ये भक्ति का शास्त्र है, कर्म का शास्त्र नहीं है। ये भी एक गलत फहमी है लोगों के मन में। लोग सोचते हैं कि भगवत गीता का सार है कि केवल हमारे कर्म हमें करते रहने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है हमें कि हमें कर्म क्यों करने चाहिए, किस उद्देश्य से करने चाहिए, किस तरह से करने चाहिए, किस चेतना में करने चाहिए। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, जो भी तुम कुछ करते हो, जो भी तुम दान देते हो, जो भी तुम तपस्या करते हो, जो भी तुम कुछ खाते पीते हो, मुझे अर्पण करके करो। इसका मतलब है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं जीवन में, वो भगवान कृष्ण के संतुष्टि के लिए हमें करना चाहिए, उनके आदेशानुसार करना चाहिए। इसको कर्मयोग भी कहते हैं, इसे भक्ति योग भी कहते हैं। जब हमारे इच्छा के अनुसार हम कार्य करते हैं और फल भगवान को अर्पण करते हैं तो उसको कर्मयोग कहते हैं। लेकिन जब भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं और वही फल उनको अर्पण करते हैं तो उसको भक्ति योग कहते हैं। और गीता में भगवान में तो बताया ही है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, कि थोड़ी सी भी भक्ति करने से इतना लाभ होगा कि इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। पुराणों में एक छोटी सी कथा आती है एक चूहे की। एक बार हुआ ये कि भगवान की मूर्ति थी एक मंदिर में, भगवान कृष्ण बांसुरी बजाए हुए खड़े थे वहां पर, विराजे थे, और उनके सामने दीप था। लेकिन जैसे ही दीप बुझने वाला था तो वहां पर एक चूहा आया और उसके अंदर जो कपास था, जो वात था, उसने सोचा कि ये कोई खाने की चीज है, तो उसने जाके अपने दांत वहां पर लगाए, जिससे क्या हुआ कि वो हिल गया और फिर से जलने लगा दीप। तो जो दीप बुझने वाला था उसको उस चूहे ने पुनः जला दिया। तो इस छोटे से कार्य के लिए, इस छोटी सी सेवा के लिए उस चूहे का उद्धार हो गया। तो कितनी सुंदर बात है, अगर एक चूहा जो ये कुछ समझता नहीं है कि भगवान कौन है, भगवान की भक्ति क्या है, उसने ऐसे सेवा करने पर उसका इतना लाभ हो जाता है, तो मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो कितना लाभ हमें होगा। और खास करके अगर किसी ने हृदय से भगवान की भक्ति की, निडर होकर भगवान के संरक्षण पे पूरी तरह से विश्वास रख के उसने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया भगवान के चरण कमलों में, तो ऐसे व्यक्ति को डरने की क्या बात है। भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अनन्य भाव से, एकाग्र चित्त से मेरा स्मरण चिंतन मनन करता है, जो सतत सदैव 24 घंटे मेरे सेवा में युक्त रहता है, उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं मैं उनको पूर्ण करता हूं, और जो भी उसके पास है मैं उसे सुरक्षित रखता हूं। इसका मतलब है कि भक्त को किसी भी चीज के बारे में डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं श्रद्धा, विश्वास, कि मैं जब भक्ति कर रहा हूं भगवान की, तो भगवान मेरा सब कुछ संभाल लेंगे, मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कितने सारे उदाहरण हम देखते हैं। द्रौपदी देवी ने जब वस्त्र हरण के समय अपने पतियों की ओर देखा था, कोई कुछ नहीं कर पाया, हालांकि इतने योग्य शक्तिशाली पति थे उनके, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, एक से बढ़कर एक योद्धा, शूर वीर, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। फिर भीष्म देव की ओर देखे, द्रोणाचार्य की ओर देखे, धृतराष्ट्र की ओर देखे, उनके बुजुर्ग पिता दादा समान सब वहां व्यक्ति बैठे हुए थे, सब ने अपना सर झुका दिया, कोई कुछ नहीं कर पाया। फिर द्रौपदी ने सोचा कि ये लोग मुझे नहीं बचा रहे हैं, तो मुझे अपने आप को बचाना होगा। दोनों हाथों से अपनी सुरक्षा के लिए बहुत कोशिश की, पहले एक हाथ से, फिर दूसरे हाथ से, फिर भी नहीं हो पाया कुछ भी। उस समय द्रौपदी जब हार मान गई, उस समय दोनों हाथ उठाकर उसने गोविंद का नाम पुकारा, और फिर भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए कपड़े के रूप में, और इस तरह से द्रौपदी के लाज को बचा लिया। इसका मतलब है कि जब तक हम इस संसार से हार नहीं मानते हैं, तब तक भगवान हमारे पास नहीं आएंगे। हार मानने का मतलब ये नहीं है कि हम सब छोड़ छाड़ के बैठ जाएं, कि चलो हम कुछ कर नहीं सकते, नहीं। हार मानने का मतलब ये है कि हम समझ लें कि यहां संसार में केवल हमारे प्रयास से, हमारे बुद्धि से, हमारी योग्यता से कुछ नहीं होगा। जब तक कि भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर नहीं रहती है, तब तक हम जितने भी शक्तिशाली हों, जितने भी कुछ भी हों, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अगर भगवान की दृष्टि, कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हो, तो सब कुछ संभव है। अद्भुत से अद्भुत कार्य आदमी ये कर बैठेगा अगर भगवान की शक्ति उसे मिल जाए तो, क्योंकि ये शक्ति, ये बल, ये बुद्धि, योग्यता तो भगवान ने ही तो दी हुई है। गीता में भगवान कहते हैं, बलम बलवतम चाहम, बलवान लोगों का बल मैं हूं, बुद्धिर् बुद्धिमताम् अस्मि, बुद्धिमान लोगों की बुद्धि मैं हूँ। तेजस तेजस्वी नाम अहम्, तेजस्वी लोगों का तेज मैं हूँ। पौरुषम ऋषु, मनुष्य समाज में योग्यता मैं हूँ। तो सब कुछ तो भगवान ने ही हमें दिया है, भगवान की बुद्धि है, भगवान का बल है, तो भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल हमें करना है। जिस तरह से जो आदमी गंगा जी की पूजा करने जाता है, गंगा जी के जल को ही गंगा जी में अर्पण करता है, जो सूर्यदेव की उपासना करता है दीप से, वो दीप या अग्नि वो तो सूरज की शक्ति का ही तो एक परिवर्तित रूप है, सूरज की शक्ति को ही सूरज में पुनः अर्पित कर रहा है वो व्यक्ति। ठीक उसी तरह से ये संसार में जो भी कुछ है ये तो भगवान का ही है, हमारा नहीं है। सब कुछ भगवान का होते हुए भगवान का केवल इन चीजों के ऊपर अधिकार है, हमारा कोई अधिकार नहीं है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मागृतः कस्य स्विद्धनम्। ईशोपनिषद में बताया हुआ है कि ये सब कुछ भगवान की संपत्ति है, केवल भगवान ने हमारे कर्मों के अनुसार हमारा कोटा दिया हुआ है। हर एक व्यक्ति का एक कोटा होता है, वो कोटा क्या चीज है, हमारे पूर्व कर्म, हमारी प्रारब्ध, उसके अनुसार हर एक व्यक्ति को अलग अलग कोटा दिया हुआ है। भाई ठीक है, इस व्यक्ति को इतना धन मिलना है, इस व्यक्ति को इतना मिलना है, उस व्यक्ति को उतना मिलना है, बस। तो ये हमारी किस्मत है, भाग्य है, नसीब है, जो भी कहिए, तो ये हमारे पूर्व कर्मों के फल स्वरूप हमें मिलते हैं। हम सब इस संसार में बद्ध हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि एक किसान अपने बैल को बांध के रखता है। अब ये बताइए कि जब कोई बैल बांधा गया है एक रस्सी से, तो वो मुक्त है या बंधा हुआ है? हाँ, लेकिन फिर भी घूम रहा है ना, घूम तो रहा है, इसका मतलब मुक्त है। तो फिर सही जवाब क्या है, बंधा हुआ है या मुक्त है? हाँ, रस्सी की सीमा तक वो मुक्त है, रस्सी की सीमा समाप्त हो गई, उसका बंधन चालू। ठीक उसी तरह से हम सब भी मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारी स्वतंत्रता की सीमा है, जहां हमारे प्रारब्ध समाप्त हो जाते हैं, बस हम वहां पर हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। कोई आदमी कितना भी कमाने का प्रयास क्यों न करे, अगर उसके प्रारब्ध नहीं है तो उससे एक पैसा ज्यादा नहीं कमा पाएगा। और अगर किसी व्यक्ति के भाग्य में लिखा हुआ है तो जबरदस्ती उसके हाथों में पैसे आ जाएंगे, कोई ना कोई देकर चले जाएगा, कोई मामा चाचा कुछ न कुछ उसके लिए छोड़ के चला जाएगा। तो इसलिए हमारे भाग्य के ऊपर ज्यादा परवाह न करते हुए भगवान का भजन हमें करना है, क्योंकि जो सुख दुख संसार में हैं, वो तो प्रारब्ध के अनुसार आएंगे और जाएंगे। वही व्यक्ति सुखी रह सकता है जो सुख दुख के बारे में चर्चा परवाह न करते हुए सच्चे आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेगा। भगवान कृष्ण बताते हैं कि भक्ति करने से हमारे सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, पाप भी नष्ट हो जाते हैं, पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं, और रह क्या जाता है, केवल हमारी शुद्ध भक्ति की भावना। तो ये श्रद्धा से अगर हम भगवान की सेवा करते रहें तो हमारे मन में कभी भी कोई चिंता, कोई भय उत्पन्न नहीं हो सकता। द्रौपदी की बात हमने कही तो द्रौपदी के बारे में ही और एक सुंदर कथा आती है, जिससे हम जान सकेंगे कि कैसे भगवान के ऊपर निर्भर रहने से हमारे जीवन में कोई भी कमी नहीं आएगी। जब वनवास में थे पांडव, तो अचानक उनके आश्रम में एक अतिथि आए, और वो अतिथि थे दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि ये तो शिवजी के अंशावतार हैं। शिवजी का एक नाम है आशुतोष, आशु मतलब बहुत ही जल्दी, तोष मतलब संतुष्ट होने वाले। आप तो जानते हैं कि शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं, और ये दुर्वासा मुनि जो हैं वो उनके अंश अवतार थे, तो शिव जी के ही गुण उनके अंदर थे। बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते, बहुत जल्दी किसी को आशीर्वाद भी दे देते। एक बार जब दुर्वासा मुनि हस्तिनापुर आए थे तो दुर्योधन ने बड़े अच्छे ढंग से उनकी सेवा की थी, और दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न हुए थे। बोला था, दुर्योधन तुम्हें क्या चाहिए, कोई आशीर्वाद मांगो, कोई वरदान मांगो। तो दुर्योधन ने कहा था, उस समय दुर्योधन तो बड़ा चालाक था, उसने कहा मैं बाद में मांगूंगा मुनिवर, अब नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तब मांगूंगा। तो दुर्वासा मुनि ने कहा था ठीक है। उसके बाद में जब पांडव और कौरवों के बीच में झगड़े शुरू हो गए और पांडव वनवास में चले गए, तो उस समय दुर्योधन कोई न कोई योजना हमेशा बनाता रहता था कि किस तरह से पांडवों को नष्ट किया जाए, खत्म किया जाए। उस बार दोबारा दुर्वासा मुनि वहां पर आए थे, अकस्मात आ गए हस्तिनापुर में। तो दुर्योधन ने सोचा कि चलो अच्छा मौका मिल गया, तो दुर्वासा मुनि से कहा कि मुनिवर आपको याद होगा कई साल पहले आपने मुझे एक वरदान दिया था, तो अब मैं आपसे वो वरदान मांगना चाहता हूं। ठीक है, मांग लो, क्या वरदान है। मैं अपने प्रिय भाइयों के प्रति बहुत चिंतित हूं जो कि वन में हैं, बेचारे बहुत तकलीफ में हैं, कितने कष्ट सहन कर रहे होंगे वो जंगल में जाकर, कहां वो पहले राजमहल में रहते थे और कहां अब जाकर जंगल में जड़ी बूटी खा रहे हैं, कंदमूल खा रहे हैं। इसलिए आप वहां पर जाकर आपका संग उनको देने का कष्ट करें। तो दुर्वासा मुनि प्रसन्न हो गए कि भाई दुर्योधन अपने भाइयों से इतना प्रेम करता है कि मुझे वहां भेजना चाहता है। तो दुर्योधन ने कहा केवल बात एक ही है कि आप केवल दोपहर के बाद में जाइएगा। दुर्योधन बड़ा चालाक था, इसलिए उसे मालूम था कि द्रौपदी के पास सूर्यदेव की कृपा से एक अक्षय पात्र था, और उस अक्षय पात्र की विशेषता यह थी कि जितना भी अन्न, जितना भी उनको भोजन चाहिए था, वो पात्र जो है वो कर सकता था, तैयार कर सकता था। परंतु सूर्यदेव ने एक शर्त रखी थी, और वो शर्त थी कि जब द्रौपदी भोजन ले लेती उसके बाद उस दिन ही अक्षय पात्र भोजन तैयार नहीं कर सकता। तो पांडवों ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो इसलिए दुर्योधन ने कहा था कि हे दुर्वासा मुनिवर, आप दोपहर में जाइए, क्योंकि उनको मालूम था कि इस समय के बाद भोजन नहीं मिलेगा, और उनको यह पता था कि दुर्वासा मुनि अपने क्रोध के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं, और जब देखेंगे कि मैं इतने सारे शिष्यों के साथ में गया हूं भूखा प्यासा, और ये लोग जानते भी नहीं है कि ऐसे ब्राह्मण का स्वागत कैसे करना है, भोजन खिलाना है, और ये हमारा सत्कार नहीं कर रहे हैं, तो अवश्य वो शाप देंगे इनके ऊपर। तो दुर्वासा मुनि गए। अब दुर्वासा मुनि बड़े शक्तिशाली योगी थे, और जब वो कहीं जाते तो अकेले नहीं जाते, उनके शिष्यों के साथ में जाते। और आपको पता है कितने शिष्य थे उनके? हाँ, कितने? 60,000। 60,000 शिष्य उनके साथ में आए। तो वहां पर पांडव बैठे थे जंगल में, अचानक क्या देखते हैं कि दुर्वासा मुनि 60,000 शिष्यों को लेकर आ रहे हैं, और द्रौपदी ने भोजन भी ले लिया है। अब जंगल में क्या किया जाए, कितने कंदमूल इकट्ठे कर दे दें उनको। तो सारे पांडव बड़े चिंतित हो गए। आके सारे पांडवों ने द्रौपदी की ओर देखा, अभी द्रौपदी तुम्हें कुछ कमाल दिखाओ, तुम्हारा अक्षय पात्र को जाके कुछ प्रणाम करो, दंडवत करो, कुछ करो। तो द्रौपदी ने कहा कि यहाँ तो समाप्त हो गया है, सूर्यदेव ने कहा था कि यहाँ जब मैं भोजन ले लूंगी तो यहाँ इसके बाद उस दिन भोजन नहीं मिलेगा। तो द्रौपदी करती क्या, एक ही चीज द्रौपदी को पता था, कृष्ण को पुकारा। उधर भगवान कृष्ण द्वारका में बैठे थे, भगवान कृष्ण ने पुकार सुनी, वहां पे उनके पास कोई मोबाइल टेलीफोन तो था नहीं जंगल में, लेकिन भगवान की पुकार वो हार्ट टू हार्ट, हृदय से हृदय का जो मोबाइल होता है टेलीफोन, वो बड़ा शक्तिशाली रहता है। जब हम बड़े हृदय से भगवान का नंबर डायल करते हैं तो भगवान सुन लेते हैं। तो द्रौपदी ने तो अच्छी तरह से भगवान का नाम पुकारा बड़े हृदय से, तो भगवान द्वारका में थे, तुरंत वहां से निकल पड़े और आए जंगल में। अरे द्रौपदी, तुमने बुलाया मुझे, क्या बात है? कहा कि देखो, ऐसी ऐसी समस्या है, तो दुर्वासा मुनि 60,000 शिष्यों के साथ में आए हैं, तो क्या कर सकते हैं हम? तो कृष्ण ने कहा, अरे तुम्हारे पास अक्षय पात्र है ना? तो कहा हाँ, लेकिन मैंने तो खा लिया है। अरे मुझे थोड़ा कुछ बचा तो उसमें से दे दो। नहीं, मैंने साफ भी कर लिया है अक्षय पात्र को। अरे दिखाओ तो सही। जब द्रौपदी ने अक्षय पात्र लाया तो कृष्ण भगवान ने ठीक ठाक देखा तो एक कर्ण चावल का वहां पर अटका हुआ था अंदर, तो वो कण निकाल लिया और चख लिया और भगवान कहने लगे, अरे वाह, इतना स्वादिष्ट अन्न तो आज तक मैंने चखा नहीं है, मैं तो बड़ा संतुष्ट हो गया हूं। अब शास्त्र में बताया जाता है, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टः। जब भगवान कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं तो सभी संतुष्ट हो जाते हैं। तो भगवान का पेट भर गया उस एक कण से। अब हम पूछेंगे कि भाई एक कण से किसी का पेट भर सकता है? हाँ, भगवान का पेट केवल चावल से नहीं भरता, भगवान का पेट प्रेम से भरता है। तो उस एक चावल के दाने में इतना प्रेम भरा हुआ था कि भगवान कृष्ण का पेट क्या, हृदय भी भर गया। और जैसे भगवान का पेट भर गया, उधर दुर्वासा मुनि अपने 60,000 शिष्यों के साथ में नदी में खड़े होकर अपना गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, स्नान करते करते। और फिर गायत्री मंत्र समाप्त हो गया, स्नान करते करते सभी को लगा, अरे इतना पेट हमारा भर गया है, क्या बात है, अचानक इतना पेट भर गया है कि हम खड़े भी नहीं हो पा रहे, ऐसे लग रहा है कि बैठकर यहीं सो जाएं। एक दूसरे की ओर देखने लगे सभी लोग और सभी के चेहरे पे वही बात। फिर दुर्वासा मुनि सोचने लगे कि ऐसी अवस्था में हम युधिष्ठिर महाराज के पास में जाएंगे, वो तो इतने बड़े राजा हैं और धर्म परायण हैं, अवश्य हमारे सत्कार के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया दावत बना के रखा होगा, और हम जाएंगे कुछ खाएंगे नहीं तो बड़ा अपमान होगा, और वहां भीमसेन भी है तो हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, तो इससे अच्छा यही हम यहीं से निकल पड़े। तो फिर दुर्वासा मुनि ने कहा, चलो भैया अब सब निकल, चलो यहां से निकल पड़ो। और भागे निकल के वहां से, नदी से निकले, जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहन लिए और भाग पड़े सारे शिष्य, 60,000 शिष्य उनके पीछे पीछे, दुर्वासा मुनि भी भाग रहे हैं। उधर काफी देर हो गई तो युधिष्ठिर ने भीम को कहा, अरे भीम जाके देखो तो सही, क्यों नहीं आ रहे सब, क्या बात है, यहां इतना सुंदर भोजन तैयार है, उनको बोलो। युधिष्ठिर को मालूम था कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया है, तो भीमसेन की आवाज तो जानते हैं, बड़ी जैसा शरीर उनका था उनकी आवाज भी वैसे थी, बुलंद आवाज। तो बुलंद आवाज में पुकारने लगे, अरे मुनिवर, मुनि जी कहां हैं आप, आइए भोजन तैयार है। उधर दुर्वासा मुनि ने भीमसेन की आवाज सुनी तो बस वहां से निकल पड़े भागते भागते, भीमसेन उनके पीछे भाग रहे, अरे मुनि जी कहां जा रहे हैं, आइए आइए। लेकिन दुर्वासा मुनि सुनने के मूड में नहीं थे, निकल गए। इस तरह से हम देखते हैं कि जो व्यक्ति अपना सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देता है, भगवान के शरण में जाता है, उसका कभी नुकसान नहीं हो सकता है। ये सच्चा योग क्षेम है। हम प्रवचन के पहले इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहे थे, जीवन बीमा। तो जीवन बीमा वालों का स्लोगन क्या है आपको मालूम है? योग क्षेम। उनकी बिल्डिंग को बंबई में योगक्षेम भवन कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाले, वो लाइफ क्या है, वो एलआईसी बिल्डिंग, वो बिल्डिंग का नाम है योगक्षेम भवन। लेकिन योगक्षेम करने वाले कौन है? भगवान है। केवल वही हमारा सब कुछ ठीक ठाक रख सकते हैं, वही हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाकर उनके नाम का उच्चारण करना चाहिए। अक्सर यह देखा जाता है कि लोग संसार के सुख दुख से बहुत प्रभावित हो जाते हैं, कभी सुख में इतने सुखी हो जाते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं, कभी दुख में इतने दुखी हो जाते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं, और बीच में जब रहते हैं तब भी भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए सुख हो या दुख हो, ये सारी चीजें अस्थाई हैं, क्षणिक हैं, आज हैं कल नहीं है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सुख दुख के पीछे भागता नहीं है, इनकी परवाह भी नहीं करता, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जो हमारे पूर्व कर्मों के फल हैं हमें मिलते जा रहे हैं। इसलिए भक्त को चाहिए कि केवल भगवान की भक्ति के ऊपर ज्यादा से ज्यादा समय लगाए। मनुष्य जीवन भगवान ने हमें केवल इस उद्देश्य से दिया है, बस भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। अंत में हमारी परीक्षा होगी मृत्यु के समय। मृत्यु के समय अगर हम भगवान का स्मरण कर पाए तो हमें समझना चाहिए कि हमारा जीवन सफल है। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। भगवान का स्मरण करने से जो लाभ मिलेगा वो स्वधर्म का पालन करने से भी नहीं मिलेगा, योगाभ्यास करने से भी नहीं मिलेगा। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। तो हमारे मनुष्य जीवन की सफलता क्या है? अंते नारायण स्मृति ही। मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण श्री हरि श्री नारायण का स्मरण करना। मनुष्य जीवन की सफलता इसमें नहीं है कि हमने जीवन में कितना कुछ कमाया है, हम कितने बड़े आदमी माने जाते हैं समाज में, यह हमारा शरीर कितना सुंदर है, यह हमने कितना भोग किया है संसार में, यह सफलता नहीं है। सच्ची सफलता यह है कि मृत्यु के समय हम भगवान को याद कर पाए हैं कि नहीं, और इतने जन्म हमारे बीत गए हम भगवान को याद नहीं कर पाए मृत्यु के समय, इसलिए तो हम आज यहां हैं, हमें एक शरीर मिला है। अगर भगवान का स्मरण करते हमने किसी पिछले जन्म में प्राण को त्याग दिया होता तो हम भगवान के धाम में वापस चले जाते। अगर अंत में भगवान का स्मरण नहीं करेंगे तो किसी और वस्तु का स्मरण करेंगे। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम मे वैति कौन्थेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे हमारी चेतना रहेगी, हमारे विचार रहेंगे मृत्यु के समय हे अर्जुन, वैसे ही अगले गति हमें मिलेगी, अगला शरीर हमें मिलेगा। पशु की जैसे अगर चेतना हमारी हुई तो पशु का शरीर मिलेगा, लेकिन अगर हमने दिव्य चिंतन में अपना सारा समय बिताया, भगवान का स्मरण करते करते अगर हमारा जीवन बिताया तो अंत में हम भगवान का स्मरण करेंगे। इसलिए हमारा जीवन हमें ऐसे बिताना चाहिए, ऐसे अभ्यास करना चाहिए, ऐसे प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम सतत भगवान का स्मरण कर सकें। स्मरण कैसे किया जा सकता है? श्रवण कीर्तन से। जिन चीजों की कथा हम बोलते हैं, जिन चीजों को सुनते हैं, उन्हीं चीजों को हम याद रखते हैं। अब सोचिए आप दफ्तर में हैं, आपके दुकान में हैं और कोई बातचीत चल रही है, तो जब घर जाते हैं तो वही बातें दिमाग में गूंजती रहती हैं, क्योंकि जो हमने सुना है, जो हमने कहा है, वो मन में रहता है। तो अगर हमें भगवान का नित्य स्मरण करना है तो भगवान की कथाओं का नित्य श्रवण और कीर्तन भी करना चाहिए। यही कलयुग का युग धर्म है, और कोई धर्म नहीं है इस कलयुग में। बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना करके वहां ऐश्वर्यशाली उपासना करना भगवान की, ये आजकल कलयुग में संभव नहीं है। इतना पैसा किसके पास है आजकल कि जगह जगह बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करें, बड़े बड़े यज्ञ करने के लिए भी कहां आजकल वो सुविधाएं हैं। गाय कहां बचे आजकल इतने, और गाय की घी कहां मिलेगी आजकल अगर यज्ञ करने भी हो तो, और वो ब्राह्मण कहां से मिलेंगे जो ये यज्ञ करने वाले हैं। और जहां तक ध्यान की बात आती है, सत्युग में युग धर्म था, कृते यध्यायतो विष्णुम, तो जंगल भी रहे कहां पर? और जंगल में जाने के लिए सब कुछ त्याग करने की भावना भी आजकल रही कहां पर? इसलिए कलयुग में भगवान ने बहुत आसान सब कुछ बना दिया है। कलौ तद हरि कीर्तनात्, केवल भक्तों के संग में इकट्ठा होकर हमें भगवान के नाम का भजन और कीर्तन करना है, बस इतना ही है, और कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस भगवान का नाम संकीर्तन करना है। आजकल लोगों को ज्यादा फिलॉसफी सुनने में रुचि नहीं है, दर्शन सुनने में रुचि नहीं है, लेकिन भगवान का नाम लेना ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रस है, आनंद है। कोई भी आदमी बैठकर भगवान का नाम तो सुन सकता है, बोल सकता है, और जो व्यक्ति ऐसा करेगा सबसे बड़ा धनवान बन जाएगा। सभी लोग धनवान बनना चाहते हैं, लेकिन असली धन क्या है ये नहीं जानने की वजह से वो गलत धन के पीछे भागते रहते हैं। लोगों को गुणवान बनना चाहिए, फिर बाद में वास्तव में धनवान बन जाएंगे। लेकिन लोग आज केवल धनवान बनना चाहते हैं, गुणवान नहीं बनना चाहते। आज की समस्या ये है, इसलिए यहां पर समाज में व्यक्ति पशुतुल्य हो गया है, इंसान इंसान नहीं रहा, इंसानियत नहीं रही आजकल, भाईचारे की भावना नहीं रही, प्रेम की भावना नहीं रही, क्षमा दया की भावना नहीं रही। क्यों? क्योंकि इंसान भगवान को भूल चुका है, और जितना ज्यादा आदमी इंसान भगवान को भूल जाएगा, भगवान को अलग, भगवान के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाएगा, तो उस हद तक यहां हमारे समाज में ज्यादा से ज्यादा परेशानी होगी। इसलिए हमारे जीवन में अगर हमें सुख शांति लानी है, और ये समाज में भी हमें सुख शांति लानी है, तो ज्यादा से ज्यादा ये नाम संकीर्तन होते रहना चाहिए, और भगवान कृष्ण को भोग चढ़ाकर उनके प्रसाद का वितरण सब जगह होना चाहिए। हमारे संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी बताया करते थे कि केवल ये दो कार्य अगर हो जाएं, तो सारे समाज का उद्धार हो सकता है, नाम संकीर्तन और कृष्ण प्रसाद का वितरण। बस ये दो चीजें हों, सारे दुनिया की सारे समस्याओं का समाधान हो सकता है। आज श्री मुरारीलाल अग्रवाल जी ने उनके अपने घर में अपना सब कुछ, अपना घर, अपना कुटुंब, अपना धन कैसे भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए, बड़ा रम्य वातावरण है, आम के पेड़ हैं और अच्छी हवा बह रही है, तो ऐसे वातावरण में भगवान का नाम नहीं लेंगे तो और क्या करेंगे? लेकिन नहीं, लोग जाके होटल में बैठेंगे, सिनेमा के घर में बैठेंगे। आजकल घर, हर एक घर सिनेमा घर बन गया है। क्यों? घर में सिनेमा टीवी है, दिन रात, केवल दिन भर नहीं, दिन रात वो खोल के बैठे हैं टीवी के सामने। वास्तव में देखा जाए तो यही कलयुग का बड़ा राक्षस है, हमारे भक्ति को नष्ट करने वाला। इन 10 सालों में जो इस एक टेलीविजन ने जितनी हमारी संस्कृति, हमारी भक्ति को नष्ट नहीं की, नष्ट किया है, उतना हजारों सालों में मुगल आए और कितने सारे अंग्रेज आए, इन्होंने वो नष्ट नहीं कर पाए। लेकिन आज ये 10 साल में टीवी सब कुछ खत्म करके जा रहा है, और हमारी सरकार समझती है कि 24 घंटे चैनल खोल के रखने से हमारी प्रगति हो रही है, और सभी लोग सोचते हैं कि जितना बड़ा टीवी हमारे घर में आए उतनी प्रगति हमारे घर में होगी। तो ये सब समस्याएं हैं। जहां पर भगवान की मूर्ति हुआ करती थी घर में, वहां पर आज टीवी है। जहां पर भगवान के सामने बैठकर लोग भजन कीर्तन किया करते थे, आज मुंह खोलकर बड़े आंखें देखकर टीवी को देखते हैं। कितनी बुरी दशा है समाज में। कहां हम थे और कहां आज हैं। एक जमाने में भारत देश क्या था और आज क्या है। अगर हमें फिर से इस पुण्य भूमि को पुण्य भूमि बनाना है, जो कि इतने तीर्थ स्थानों से भरा हुआ है, जिसका इतना प्राचीन इतिहास है, आध्यात्मिक इतिहास है, यही भूमि जहां अनंत भगवान के अनंत अवतार हुए हैं, भगवान के इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा प्रकट हुए हैं यहां पर, और यहां इस स्थान में आदमी सोचते हैं कि भगवान की भक्ति करने से कोई दुर्भाग्य की बात है। लोग सोचते हैं, आजकल हमारे मंदिर में जितने भक्त आते हैं, इनमें कई ऐसे एक एक अपनी अपनी कहानी बताते हैं, आश्चर्यचकित हम रह जाते हैं। कोई कहता है कि हमारे भक्त, हमारे परिवार में लोग कहते हैं किसी को मत बताओ, तो मंदिर में जा रहे हो, हमारा हम बदनाम हो जाएंगे। अरे, मंदिर में जाने से कोई बदनामी की बात है? भगवान की भक्ति करने से आदमी बदनाम हो जाता है। और ऐसे कितने सारे उदाहरण, हम तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि आजकल ये मनुष्य समाज में अब में रंजीत सिंह हुआ करते थे राजा, आपने उनका नाम सुना होगा। तो एक बार हुआ ये कि उनके राज्य में एक आदमी था जिसको गिरफ्तार करके उनके पास लाया गया था। उसका कसूर क्या था? एक गाय चरते चरते कहीं सड़क में आ गई और उसने अपने सींग जो है कहीं किसी गेट में, वो जो सींग अटक गए, शायद गेट के उस पार कुछ घास वगैरह कुछ हुआ होगा, तो उसको खाने के लिए अपना सर घुसा दिया उसने वहां पे और वो बाहर नहीं निकाल पाई, तो अटक गई वहां पर, वहां गर्दन अटक गया उस गेट के बीच में। तो वहां जल्दी से भीड़ इकट्ठी हो गई, अरे क्या किया जाए। तो कोई कहने लगा कि चलो कुछ चीज लाओ, ये गेट इस बार को काट दो। कोई कहने लगा नहीं, ऐसे नहीं कटेगा, दीवार को तोड़ दो, दीवार को तोड़ने से शायद वो निकल जाएगी। इस तरह से लोग अपना अपना प्रस्ताव सामने रख रहे थे। फिर एक व्यक्ति ने कहा, अरे बहुत आसान है उपाय, इसकी सींग काट दो ना, सींग काट दोगे तो आराम से निकल आएगी गाय। लोगों ने स्वीकार नहीं किया इस सुझाव को। आखिर खैर किसी न किसी तरह से गाय को मुक्त करा दिया उन्होंने। महाराज रंजीत सिंह के पास खबर पहुंच गई, लेकिन महाराज रंजीत सिंह ने जब बात सुनी तो एक चीज को उन्होंने बहुत ध्यान से नोट किया। तो उन्होंने बताया, कहा कि उस व्यक्ति से जिन्होंने उनको खबर पहुंचाई थी, कि अरे एक व्यक्ति ने ये कहा कि उस गाय के सींग काट दो, ऐसे कहा है व्यक्ति ने? हाँ हाँ, उसको लेकर आओ तो मेरे पास। तो लेकर आए उसे। जब वो उनके पास में आया तो महाराज रंजीत सिंह कहने लगे, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कुछ कहा, जो भी होगा, मोहन सिंह या जो भी है। तुमने तो नाम हिंदू नाम दिया है, लेकिन लगता है कि तुम तो हिंदू नहीं हो। नहीं नहीं, हम तो हिंदू हैं। नहीं नहीं, तो अगर तुम वास्तव में हिंदू हो तो ये कहो, ये बताओ कि तुम्हारे मन में ये विचार भी कैसे आया कि गाय के सींग को काटना चाहिए इस तरह से? ये विचार कैसे आया तुम्हारे मन में? संभव नहीं है। जी हुजूर, हम तो हैं, अभी गलती हो गई, बहुत क्षमा कीजिए, तुम्हारे मां को बुलाओ। तो बेचारी मां को बुलाया गया, वो तो घबराकर कांपते हुए आए कि राजा बुला रहे हैं, अब क्या बात है, क्या हुआ? तो राजा के सामने आए तो कहने लगे कि हुजूर क्या हुक्म है? तो महाराज रंजीत सिंह ने कहा कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो या कौन हो, क्या हुआ? तो हम तो हिंदू हैं। अच्छा, न मुझे तो नहीं लगता। इस लड़के का पिता कौन है? वो भी हिंदू है, मुझे तो नहीं लगता। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि जब इस लड़के का जन्म हुआ था तो परिस्थिति क्या थी? तो फिर उस महिला ने बताया कि हाँ, जब मैं अपने घर में थी, मेरे बेटे को जन्म दे रही थी, ठीक उसी तरह से सामने जो खिड़की थी उससे बाहर मेरी नजर चली गई और वहां पर सामने जो घर है उसकी छत पर एक व्यक्ति आ गया। उसका व्यवसाय वो कसाई है। तो ये मन में विचार आ गया और वो जो कार्य करता है वो विचार मेरे मन में आ गया। तो फिर रंजीत सिंह समझ पाया, हाँ ये बात है देखो, कि वहां पर केवल اس کسائی کا منہ دیکھنے سے، اس کسائی کو دیکھ کر اس کے بارے میں جب وچار من میں آئے، من میں وکار پیدا ہو گئے کہ کسائی کیا کام کرتا ہے، کیسے پشوؤں کی ہتیا کرتا ہے، اور اس کا پربھاؤ شیشو کے چیتنا کے اوپر پڑ گیا، یہ سنسکار پڑ گئے شیشو کے اوپر، اور پھر آگے چل کے یہ سنسکار رہے۔ جو ہمارے من کے اوپر سنسکار پڑتے ہیں وہ بیج کے سمان ہیں، آج نہیں تو کل وہ پھل پردان کرتے ہیں۔ تو یہ سنسکار نے اب بیج، یہ بیج جو ہے یہ اب پھل پردان کیا۔ کیول ماتا نے سوچا تھا اس لیے بات یہی تک رک گئی۔ پھر مہاراج رنجیت سنگھ سمجھ گئے کہ کیوں اس ویکتی نے ایسے کہا تھا، پھر دونوں کو چھوڑ دیا اور اس ویکتی سے کہا کہ آئندہ ایسے باتیں نہیں کرنا۔ اس کا مطلب ہے دیکھیے کہ ہماری چیتنا اور چیتنا کے اوپر جو سنسکار ہے، یہ ساری چیزیں اتنی سوکشم باتیں ہیں، کیول ایک کسائی کو دیکھ کر اتنا اثر پڑتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے کوئی آدمی خود پشوؤں کی ہتیا کرتا ہو، خود مانس کھا رہا ہو، کچھ ایسے برے پاپ کرتے رہا ہو، تو اس کے جیون میں کتنا پربھاؤ ہوتا ہوگا، اور ایسا پربھاؤ وہ پھیلاتا ہے دوسرے لوگوں کے اوپر۔ اسی لیے لوگ آج کل کے سماج میں ایسا بولتے ہیں کہ مندر میں مت جاؤ، ہمارے کٹمب کو بدنام نہیں کرو۔ ہم نے سماج ایسا بنا لیا ہے کہ جہاں کیول جو پیسے کماتا ہے وہی سروشریشٹھ مانا جاتا ہے، وہی آدرنیہ ہو جاتا ہے سب کے لیے، اس کا ادھارن سب کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ لیکن جو گنوان ویکتی ہے، جو بھگوان کا بھکت ہے، اس کا ادھارن سامنے کوئی نہیں دیتے کہ دیکھو اتنا اچھا بھکت ہے یہ، تم بھی اس کی طرح بنو۔ آج کل ماتا پتا بھی بچوں کے بارے میں بہت چنتت رہتے ہیں کہ بچوں کی پڑھائی اچھی طرح سے ہونی چاہیے، ان کو آگے چل کے اچھے پیسے کمانے چاہیے، ڈاکٹر انجینئر اچھا بننا چاہیے، یا تو پھر ویوسائے اچھی طرح سے سنبھالنا چاہیے۔ لیکن کتنے ایسے ماتا پتا ہیں جو وچار کرتے ہیں کہ میرے بچے کو اچھا بھکت بننا چاہیے بھگوان کا، اور اس درشٹی سے اسے پالتے ہیں اور پوستے ہیں، بہت کم۔ لیکن یہ ہماری سنسکرتی ہے، بچپن سے ہی بچے کو ایسے سنسکار ملنے چاہیے جس سے کہ آگے چل کے وہ بھگوان کا اچھا بھکت بنے۔ پرہلاد مہاراج بھاگوت میں بتاتے ہیں، کومار آچریت پراگیو دھرمان بھاگوتان ایہ درلبھم مانوشم جنم تدپی ادھروم ارتھدم۔ وہ کہتے ہیں اپنے مطروں سے کہ ہے مطروں، یہ منوش جیون جو ہے بہت درلب ہے، پرنتو ارتھدم بہت مولیوان ہے، کیونکہ کیول منوش جیون میں ہم بھگوان ہری کی بھکتی کر سکتے ہیں۔ اس لیے بھگوان کی بھکتی بچپن سے ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ بہت غلط فہمی ہمارے سماج میں ہے کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ریٹائر ہو جائیں گے، تبھی ہمیں بھکتی کرنی چاہیے۔ لیکن پرہلاد تو ایسا نہیں کہتے بھاگوت میں، پرہلاد کہتے ہیں کہ بچپن سے ہمیں کرنا چاہیے، کمار اوستھا سے۔ یہاں تک کہ شاستر میں بتایا گیا ہے کہ ماں جب گربھوتی ہوتی ہے تو اسے بچے کو اندر سنسکار اس سمے سے دینے چاہیے۔ پرہلاد نے تو بھاگوت وہیں پر سنا تھا نا، اپنے ماں کے گرب میں سنا تھا۔ جب ہرن کشپ تپسیا کرنے گئے تھے تو اندر نے آکرمن کیا تھا ہرن کشپ کے راج کے اوپر، اور کیادھو جو کہ ہرن کشپ کی پتنی تھی، رانی تھی، ان کا ابہرن کر کے لے گئے تھے۔ لیکن نارد منی بیچ میں آئے اور اندر سے کہا کہ نہیں، اس مہیلا کے گرب میں ایک بہت مہان بھکت ہے، اس لیے تم اسے مارنا نہیں۔ تو اندر نے بات مان لی سر جھکا کے، اور نارد جی نے کیادھو کو اپنے آشرم میں رکھ لیا سرکشت، اور وہاں پہ کیادھو کو شریمد بھاگوت کا اپدیش دیا۔ کئی دن لگاتار نارد جی بولتے گئے بولتے گئے بولتے گئے، کیادھو سنتے گئے سنتے گئی۔ پرنتو نارد منی کا اُدیش کیول کیادھو کو بھاگوت سنانے کا نہیں تھا، وہ چاہتے تھے کہ کیادھو کے گرب میں جو بچہ ہے اسے بھی یہ سننا چاہیے۔ پھر پرہلاد نے जब हरि कथा की अपने मित्रों से, तो मित्रों ने पूछा कि प्रहलाद तुम्हें ये सब कहां से पता चला? ये सारी बातें हमने तो हमारे गुरुजनों से नहीं सुनी है। तो प्रहलाद ने कहा कि मैं जब मेरे मां के गर्भ में था तो मैंने मेरे गुरु नारद जी से ये बातें सुनी थी। सारा भागवत मैंने सुना उस समय। मेरी मां तो भूल गई लेकिन मैंने याद रखा। तो देखिए प्रहलाद ने सारे भागवत को अपने मां के गर्भ में सुना था और याद रखा था। तो ये संस्कार कितने शक्तिशाली होते हैं। इस तरह से हमारे घर में भी हमें बिल्कुल भक्तिमय वातावरण बनाना चाहिए। अगर घर में कहीं टीवी भी चल रहा हो, हम सोचेंगे ठीक है हम दूसरे कमरे में बैठे हैं लेकिन वहां सिनेमा के गाने चल रहे हैं, तो वो हमारे मन में संस्कार पैदा करते हैं, हमारे बच्चों के मन में भी संस्कार पैदा करते हैं। और ये सारे संस्कार जो है भक्ति के संस्कारों को दबा देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और भक्ति के बीज को ऊपर फल प्रदान करने में रोक देते हैं। इसलिए आगे चल के इन बच्चों को भक्त बनना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने बुरे संस्कार जो पड़ जाते हैं उनको। आजकल जगह जगह बुरे संस्कार मिलते हैं, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। इसलिए हमें सत्संग की बहुत आवश्यकता है आजकल। जहां भी भक्तों का संग हो वहां हमें जाना चाहिए, वहां जाकर नाम संकीर्तन करना चाहिए, कथा में शामिल होना चाहिए, अलग अलग तरह से भगवान की सेवा करनी चाहिए, और अपने घर में भी रहकर गीता भागवत का पाठ करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। उनको भोग चढ़ाकर ही हमें वो भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। भोग चढ़ाए बिना कुछ भी खाना नहीं चाहिए। जैसे कि भगवान कृष्ण गीता के तीसरे अध्याय में बताते हैं, यज्ञ शिष्टाशन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भोग चढ़ाए बिना कुछ खाता है वो तो पाप ही खाता है, परंतु जो व्यक्ति मुझे प्रेम से भोजन अर्पण करता है और प्रसाद ग्रहण करता है उसके बाद में, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो देखिए पापों से मुक्त होने का कितना अच्छा तरीका भगवान ने दिया है, उनका नाम का संकीर्तन और उनके प्रसाद का सेवन। बस इतना आसान तरीका है। तो आज श्री मुरारीलाल अग्रवाल जी ने हमें ये मौका दिया कि आज एक शाम में हमने बहुत धन कमा लिया, तो आपने हमें बहुत धन कमाने के लिए सहायता किया है, आपने अच्छी इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की है, तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको और आपके कुटुंब के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की हमेशा कृपा दृष्टि रहे, कि आप सब भक्ति मार्ग में अच्छी तरह से प्रगति करते रहें और अपना मनुष्य जीवन सार्थक करें। आप सबको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इतनी शांति से यह प्रवचन सुना। आप सब अपना मूल्यवान समय निकालकर यहाँ पर आए इस सत्संग में शामिल होने के लिए। अगर आप सब नहीं आते तो हम क्या करते यहाँ पर? अगर श्रोता नहीं होते तो वक्ता बेचारा क्या करेगा? तो आप सब आए यहाँ पर समय निकालकर, इसके लिए भी हम आपके आभारी हैं। और यही आपसे निवेदन करेंगे कि आपके घर में भी ऐसा ही एक वातावरण बनाए रखिएगा। सुबह को शाम को कम से कम दोनों टाइम नहीं तो एक समय तो कम से कम कुटुंब के सारे सदस्यों को एकत्र होकर भगवान का नाम का संकीर्तन करना चाहिए। इससे हमारा मनुष्य जीवन ठीक ठाक चलेगा, हमारा कौटुंबिक जीवन ठीक ठाक चलेगा। और जितना हो सके आप सत्संग में आइएगा। श्री श्री राधा गोकुल आनंद जी का मंदिर यहाँ शुक्रवार पेठ में तिलकवाड़ी में है, ये भी आपका ही मंदिर है। मंदिर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं। कृपया राधा गोकुल आनंद जी का दर्शन लेकर आपका जीवन धन्य कीजिए, सत्संग का लाभ लीजिए और मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।